मेरे नौजवान दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे आईपीसीसी की रिपोर्ट और भारत, इसके बारे में कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए इससे पहले कुछ जो दूसरे समाचार और घटनाएं हैं उन्हें देख लेते हैं। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर मुझे लगता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से, हालांकि इसे अखबारों में बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिली है दोस्तों, वह है काकोरी कांड। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने शायद पढ़ा भी होगा। और हमारे इतिहास में इसका उल्लेख काकोरी कांड के नाम पर ही है। इंग्लिश में इसे कहा गया है काकोरी कंस्पिरेसी, यानी कि षड्यंत्र। देखिए, सीधी सी बात है कि उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी, हम उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, आज़ादी की अपनी मांग कर रहे थे, तो हमारे जो क्रांतिकारी हैं वो उनके लिए कुछ इसी तरह के होंगे, षड्यंत्रकारी जैसे उनको लगते होंगे। ठीक है, उन्होंने अपने समय में कहा, लेकिन मुझे लगता है कि उन सबको अब हमें दुरुस्त कर लेना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे अब दुरुस्त किया है और इस काकोरी कांड को रिप्लेस कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन शब्द से, काकोरी ट्रेन एक्शन। और मुझे लगता है कि इतिहास के स्टूडेंट के लिए शायद ये शब्द ज़्यादा सही भी है, क्योंकि जैसे ट्रेन शब्द आ गया ना, तो ट्रेन आते ही आपके दिमाग में हो जाएगा कि अच्छा अच्छा कोई ऐसी घटना होगी जो ट्रेन में घटित हुई होगी, और डेफिनेटली ये ट्रेन में ही घटित हुई घटना है। उस समय एक ट्रेन जाती थी, एट डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर, उसमें ये घटना घटित हुई थी। और जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 क्रांतिकारी युवा थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। और इसी में दो तीन जो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हैं इतिहास में, आप जिनको बड़े श्रद्धा के साथ याद करते हैं और जिनका नाम आप पढ़ते भी हैं, रामप्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला जी, चंद्रशेखर आज़ाद इसमें शामिल थे। और दुर्भाग्य से जो रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला हैं उन्हें फांसी की सजा हुई इस घटना के लिए, और टोटल लगभग 10 क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। खासकर इनका उद्देश्य था कि उस ट्रेन में जो खजाना जा रहा था, सरकारी खजाना, उसको लूटा जाए ताकि धन की जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो कभी कभी सिविल सर्विस इस तरह के प्रश्न उठा लेता है जिनका संबंध कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करंट से हो, तो आप थोड़ा सा इसे ठीक से देख लेंगे। दोस्तों, आज के अखबार में एक खबर छपी है जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी महत्वपूर्ण तो है। आप जानते हैं कि अभी जो संयुक्त राष्ट्र के जो सुरक्षा परिषद है, एक महीने के लिए भारत उसका अध्यक्ष है, तो अभी एक खुली परिचर्चा हुई थी, उसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। उसमें खासकर समुद्री व्यापार और उसकी सुरक्षा के बारे में विषय रखा गया था। उसके तहत हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 सिद्धांतों की बात कही है और अखबारों में इसे काफ़ी जगह मिली है। और इन 5 सिद्धांतों का संबंध सीधे सीधे समुद्री व्यापार, समुद्री सुरक्षा से है। मुझे लगता है कि ये 5 सिद्धांत आपको मालूम होने चाहिए। हालांकि देखिए, है ये बहुत आसान, लेकिन अगर आप ध्यान से इसे नहीं देखेंगे और एग्जामिनेशन में अगर लिखना पड़ गया तो आप गड़बड़ा जाएंगे। क्योंकि होता यही है कि जो बात हमें बहुत आसान लगती है उस पर हमारा ध्यान थोड़ा कम हो जाता है, और जब हमारा ध्यान कम हो जाता है तो देखिए भटकने की जो आशंकाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो मैं जो 5 सिद्धांत हैं बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं, उनके एक्सप्लेनेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं भी आपको सुना रहा हूँ, पढ़कर ही सुना रहा हूँ, आप बड़े आराम से उन्हें समझ जाएंगे। आइए इसे देख लेते हैं। तो पहली बात तो उन्होंने यही कही, सिद्धांत नहीं है कि ये जो समुद्र है ये हमारी जो है विरासत है, साझी विरासत है, ये किसी एक की नहीं है। और सीधी सी बात है कि अगर ये साझी विरासत है तो इस पर सबका अधिकार है और सबका दायित्व तो भी है। तो इस तरीके से जो कुछ भी यहां से संबंधित समस्याएं हैं, समुद्री व्यापार, समुद्री सुरक्षा से संबंधित, हम सबको मिलकर उनका मुकाबला करना चाहिए, उन्हें हल करना चाहिए। ये कैसे किया जा सकता है, इसी के लिए उन्होंने 5 सिद्धांत दिए हैं। देखिए, पहला क्या है, वैध समुद्री व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करना। वैध समुद्री व्यापार, तस्करी वगैरह का नहीं है ना, जो वैध तरीके से समुद्र के माध्यम से जो व्यापार होता है, आपको मालूम है कि हमारा विदेशी व्यापार कितना ज्यादा समुद्र के माध्यम से ही होता है, और हमारा ही नहीं बल्कि दुनिया का व्यापार, क्योंकि जो समुद्री मार्ग है वो काफी सस्ते पड़ते हैं। तो वैध समुद्री व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करना, उसके रास्ते में जो भी बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि समुद्री विवादों का निपटारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर हो, इंटरनेशनल जो लॉ है इसको लेकर के बनाए गए हैं उनके आधार पर अगर कुछ देशों के बीच विवाद खड़े हो जाते हैं तो बेस उनको बनाया जाना चाहिए, उन देशों के अपने अपने कानून को नहीं, कहने का ये मतलब है। तीसरा है कि जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या फिर जो आतंकवादी घटनाएं घटित हो जाती हैं, कभी कभी समुद्री डकैती या भी होती हैं, तो इनका जो मुकाबला है वो मिलकर किया जाए। अब देखिए भले ही वो एक राष्ट्र उस चक्कर में फंसा हुआ है लेकिन ऐसा नहीं कि ठीक है वो राष्ट्र निपटेगा, क्योंकि ये साझी विरासत है तो जरूरी है कि सभी देश इसका भी मिलकर मुकाबला करें। चौथा सिद्धांत है कि समुद्री पर्यावरण एवं संसाधनों का संरक्षण किया जाए, जिस पर आजकल बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और पांचवा है समुद्री संपर्क को और प्रोत्साहित किया जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। तो देखिए ये पांच सिद्धांत हैं, पांचों बहुत सरल से हैं लेकिन अगर आप इसे ध्यान से नहीं सुनेंगे, अपने दिमाग में दर्ज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली लिखने में गड़बड़ा जाएंगे, तो ये अपने दिमाग में आप रख लें। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, IPCC की रिपोर्ट। आज के अखबारों में इस पर काफी खबरें छपी हैं, एडिटोरियल कमेंट्स भी आए हैं, आगे भी आएंगे, क्योंकि जो IPCC है वो अपने आप में पर्यावरण की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। देखिए IPCC तो एक तो ये कि इंटर गवर्नमेंटल है, ये आई का मतलब इंटर गवर्नमेंटल, आप कह सकते हैं अंतर सरकारी कह सकते हैं अगर हिंदी में अगर आपको अनुवाद करना हो तो, मतलब सरकार इनमें शामिल है। पैनल है किसके लिए, फॉर क्लाइमेट चेंजेस, यानी कि जो जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं इन जलवायु में परिवर्तन होने के लिए जो सलाह दी जानी चाहिए, जो वैज्ञानिक राय दिए जाने चाहिए कदम उठाने के लिए, तो उन पर राय देने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन है, आप यूं कह सकते हैं। तो दोस्तों ये चूंकि UNO की बॉडी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बॉडी है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी पहले की भी स्थापना हुई है इसकी। इसकी स्थापना हुई थी आप सोचिए कि 1988 में, और बकायदे 2007 में इसे अपने काम के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। अभी इसकी एक रिपोर्ट आई है और खासकर ये याद रखिए कि जब भी IPCC की रिपोर्ट आए तो उसे आप बहुत महत्वपूर्ण माने, ये सामान्य रिपोर्ट नहीं होती है, है ना। दुनिया के सभी देश लगभग लगभग इसके मेंबर्स होते हैं और बहुत ही मेहनत के साथ ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। आप यूं मान करके चलें कि पर्यावरण पर इसने जो भी अपने रिपोर्ट्स दी हैं, पर्यावरण पर मेंस में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आप इस रिपोर्ट को शामिल कर लें, और चूंकि इनकी रिपोर्ट बहुत व्यापक होती है तो आपको तथ्य मिल भी जाएंगे। इस रिपोर्ट की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, देखिए इसमें इन्होंने क्या नाम दिया है, मानवता के लिए कोड रेड अलर्ट, मानवता के लिए कोड रेड अलर्ट। रेड अलर्ट आप समझते हैं मतलब खतरा, मानवता के लिए ये खतरा है, यानी कि जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं अगर इसका क्रम यही रहा तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। फ्रेंड्स अखबारों में इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है कि इन्होंने रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही हैं। मेरी समझ से अखबार में आप जब देखेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी और मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको इस पर एक छोटा सा नोट तैयार कर लेना चाहिए। मेरा कंसर्न यह भारत से है ना, कि भारत का इस पर क्या प्रभाव, कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना इस रिपोर्ट के आधार पर। तो देखिए मैं केवल उन्हीं बिंदु की चर्चा कर रहा हूं जो विश्व स्तर पर है, वो भी कहीं ना कहीं इसी से ही जुड़ा हुआ है, तो वो आप अखबारों में देख लेंगे। पहला तो दोस्तों ये है कि ये उम्मीद की जा रही है कि समुद्र में जो तापमान बढ़ने के कारण जो चक्रवातों की जो संख्या है उसमें वृद्धि हो सकती है। ठीक इसी तरह से चूंकि गर्मी बढ़ेगी और गर्मी बढ़ने के कारण जो वनों में आग लगती है वो वनों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। जो रेनफॉल है यानी कि जो वर्षा है वो भारत के दक्षिणी भाग में बहुत ज्यादा हो सकती है, सीवियर रेन्स दक्षिणी भाग में हो सकती है, और ठीक इसी तरह की स्थिति हमारे जो दक्षिण पश्चिम घाट है, तट है कह लीजिए, दक्षिण पश्चिम घाट में भी इसी तरह के होने की आशंकाएं हैं। मानसून भी डिस्टर्ब होगा और इसके कारण जो तापमान बढ़ेगा और तापमान बढ़ने से ग्लेशियर बकायदे पिघलेंगे, ज़्यादा से बर्फ उन पर ज़्यादा जमेगी नहीं, ग्लेशियर पीछे हटते चले जाएंगे। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो उससे बकायदे जो इससे जुड़ी हुई जो झीलें होती हैं उनमें बाढ़ आने की संभावना होगी और यहाँ तक कि जो समुद्र का जल स्तर है वह भी बढ़ सकता है, बढ़ेगा। यहां जो बातें कही गई हैं अब आप सीधे सीधे इसे कृषि से जोड़कर देखें, इसलिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। मैं ये बात आपको याद इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि भारत में कृषि पैटर्न को लेकर के बदलाव की बात लगातार कही जा रही है और ये जो बदलाव की बात कही जाती है ये केवल इसलिए नहीं कि लोगों की आय में ही वृद्धि हो सके बल्कि उसके दो और कारण हैं। पहला तो यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ जा सकें और दूसरा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि क्षेत्र को जो चुनौतियां मिल रही हैं, जो चुनौतियां आने की आशंकाएं हैं, हम उनका मुकाबला करने के लिए अभी से अपने आप को तैयार कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं जो व्यापक स्तर पर जो इसके प्रभाव होंगे। अखबारों में काफ़ी कुछ लिखा गया है, आप उन्हें देख लेंगे और सच पूछिए तो जो प्रभाव भारत पर होने हैं कहीं ना कहीं वो प्रभाव पूरे विश्व पर ही होने हैं, बहुत ज़्यादा दोनों अलग नहीं हैं। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं योगेश गावहने औरंगाबाद महाराष्ट्र से और सौम्य रंजन मिश्रा उड़ीसा से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।